क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
मैं डॉक्टर देवराज सिरतन क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा कार्यक्रम जो चलने वाला है उसके मेहमान हैं श्री सुरेश रामबन जी, और आज का हमारा विषय है युवा पीढ़ी के बीच हिंदी का प्रचार। श्री सुरेश रामबन जी के बारे में दो शब्द। आप 13 साल की उम्र से ही हिंदी और हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हिंदी अध्यापक बनने के बाद आपने प्रथम प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम के दफ्तर में कार्य संभाला। वहाँ पर आप जनसंपर्क अधिकारी रहे। आपने हिंदी में 4 पुस्तकें लिखी है। आपकी पहली पुस्तक का विमोचन 1978 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने दिल्ली में किया था। आप इन दिनों हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रधान हैं और हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। श्री सुरेश रामबन जी नमस्कार।
नमस्कार जी।
श्री सुरेश रामबन जी, आपने अनुमान लगाया होगा कि इन दिनों हिंदी के प्रति युवकों में कम रुचि देखने को मिलती है, इसका क्या कारण हो सकता है हमें बताइए।
देवव्रत जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के ज़रिए भी हिंदी के अभियान में सहायता मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो विषय आप बोल रहे हैं कि हिंदी के प्रति नवयुवकों का रुझान कुछ कम है, मैं शायद इस बात को नहीं मानता प्रभु। हिंदी के प्रति उनको कोई चिढ़ नहीं है, हिंदी के प्रति उनकी कोई नफरत नहीं है। हाँ, बल्कि हिंदी किस ढंग से पढ़ना चाहिए और कैसे हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए, हिंदी की टीचिंग, शायद इसमें लेकर के उनको कुछ समस्याएं हैं। अन्यथा देखा जाए तो हर नौजवान की तरह नवयुवक आज के हमारे हिंदी गाने, हिंदी गज़लें, हिंदी फिल्में, यही तो उनका जीवन है। मैं सोचता हूँ कि हिंदी स्पीकिंग की ओर से हम जो प्रयत्न इन दिनों कर रहे हैं उनको मस्ती में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इतनी चुनौतियां हैं, इतने चैलेंजेस आज हो गए हैं इस जीवन में, कि उनको बिठा करके जैसे पहले पहल हम हिंदी पढ़ाते थे बच्चों को, शायद ये नवयुवकों को आज पसंद नहीं है।
तो आपकी संस्था की ओर से इसको स्थिति को पाटने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, ज़रा बताइए।
ये बहुत एक आवश्यक पहलू है जिसको आप उठा रहे हैं। देखिए, समय के साथ हर एक व्यक्ति को बदलना पड़ता है, वो चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के हो, वो चाहे साइंस को लेकर के हो, वो चाहे सामाजिक पक्षों को लेकर के हो,
समय का ध्यान रखना।
हाँ, समय का ध्यान रखना पड़ता है हमको, और हम हिंदी को इसी सांचे में ढलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नवयुवक जो है हिंदी, जैसे वो समझते हैं कि हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, अच्छी भाषा है, तो हम चाहते हैं कि वो हिंदी को पढ़ें, लिखें, बोलें और गाएं एक ऐसे अंदाज से ताकि हिंदी का भी मान बढ़े और समाज का भी नाम बढ़े। इसलिए पिछले दिनों आपने सुना होगा, और देश ने हमारे इसके लिए हमको बहुत शाबाशी दी कि हिंदी स्पीकिंग की ओर से हमने एक हिंदी की मस्ती कार्यक्रम का आयोजन किया मोस्वाजी के समुद्र तट पर।
जी हाँ।
जहां हमने 2000 लोगों को अंदेशा हमने किया था कि वो आएंगे, एक्सपेक्टेशन था, आ गए 20,000 लोग।
20,000?
हाँ, पूरे दिन 8 बजे से 5 बजे शाम तक लोगों का गाना बजाना। और वहाँ पर क्या किया हमने, देखिए अभी जो प्रश्न आपने पूछा ना, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हमने एक नहीं, दो नहीं, 3 मंच बड़े बड़े बनाए जिनको गाना गाना है, जिनको गजल सुनना है, जिनको फोल्कलो जिसे बोलते हैं लोकगीत सुनना है, जिनको नृत्य करना है, हर एक को हमने बांट दिया इन तीनों मंचों पर। और मोसवाजी बीच जो है वो जितना बड़ा है, लंबा है, कार्यक्रम भी हमारा उतना ही लंबा हो गया और सभी को मौका मिला और विशेषकर नौजवान वहाँ पर आए।
हाँ, इसी पर मैं कुछ पूछने वाला था, युवकों की भागीदारी इसमें कहाँ तक रही?
युवक जो है आज वो चाहता है कि वो मछले, वो नाचे, उसकी कमर डोले। नवयुवक जो भाई हैं, बहन हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो चाहते हैं कि क्योंकि दे नीड एंटरटेनमेंट। और एक भाषा में अगर एंटरटेनमेंट का पहलू नहीं है तो वो भाषा समृद्ध नहीं है। इसीलिए हिंदी तो आदि काल से, मॉरिशस में अगर एक सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक बोलने का मतलब है कि सोशल अवेयरनेस जो हुआ है और शिक्षा को लेकर के जो अवेयरनेस हुआ है वो हिंदी के प्रतापे हुआ है। एक ज़माने में लोग हिंदी गानों को पंडितों की कथा, पंडितों के पहचान प्रवचन से ज़्यादा मान देते थे। एक ज़माने में फिल्में में जो उपदेश दिए जाते थे, गाने आते थे, जो कैसे बोलते हैं थीम था उसका, है उसको कथा वार्ता से ज़्यादा महत्व देते थे हमारे लोग। और वहीं से उन लोगों ने अपने आप को संभालने का प्रयत्न किया, अपने आप को देश प्रेम, सामाजिक प्रेम और शिक्षा के साथ उन्होंने जोड़ा इन्हीं से।
मैं एक बात यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके कहने का मतलब ये भी है कि कक्षा से बाहर थोड़ा सा बच्चों को निकाल कर, जो हमारी शिक्षा की जो प्रणाली है उसे थोड़ा सा हट के,
बिल्कुल देवरत जी, आप
मनोरंजन लाकर, उसको मिलाकर,
सही
उसको गति,
आप,
हिंदी को गति देने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें।
आप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में प्राध्यापक रहे हैं
जी,
और यही शायद मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं हमारे साइंस पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, और इनके सामने अगर आप सोचेंगे कि पहले ज़माने की तरह क ख ग घ ये पढ़ें, बर्तनी पढ़ें, उच्चारण करें हिंदी का, ये इनसे नहीं होगा। दे आर वेरी स्मार्ट टुडे, और स्मार्ट का मतलब होता है ये हिंदी गाते हैं, जीते हैं, कार में बैठते ही ये अपना रेडियो ऑन करते हैं। आप कविता देखिए यूट्यूब में जो कवि सम्मेलन होता है, कौन देखता है इनको, कौन अप्रिशिएट करता है, सारे युवक लोग हैं। तो हिंदी पढ़ने, हिंदी के प्रचार प्रसार का ये माध्यम आज है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप हिंदी सिर्फ इन्हीं से सीखेंगे, नहीं, हिंदी तो पढ़ना चाहिए, हिंदी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, हिंदी की कक्षाओं में भी जाना चाहिए। बस दैट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स।
आपको नहीं लगता कि जो आज के युवक हैं वे अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं हिंदी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविता के माध्यम से?
बिल्कुल बिल्कुल, इसी के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। और देखिए, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो आप चाहे कितना भी अंग्रेजी पढ़ लें, फ्रेंच पढ़ लें, आप रूसियन भाषा पढ़ लें, चाइनीज भाषा पढ़ लें, लेकिन जो आपकी सोच है व्यवहारिक रूप से, नेचुरल वे से, आप जब सोचेंगे, जब गर्मी महसूस करेंगे, ठंड महसूस करेंगे, आप कहीं पर मस्ती करेंगे, तो आपकी ये जो भाव हैं आपके, ये सबसे पहले हिंदी में ही, भोजपुरी में ही आपको दर्शाएंगे।
आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि हिंदी में जो अपनापन है उसको उजागर करना,
यही दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि आप सोचेंगे हिंदी में, बोलेंगे हिंदी में। और हम जो है ना, तो क्या करते हैं, हम ज़्यादातर ट्रांसलेशन करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं, बट जो ओरिजिनल जो भाव आता है, जो सोच होती है, वो हिंदी की सोच होती है।
तो आप इन सभी बातों को बता रहे हैं कि आप हमें थोड़ा ये बताइए कि भावी जो आपका जो कार्यक्रम है बच्चों को, यानी युवकों को इस क्षेत्र में लाने के लिए क्या विचार करना चाहते हैं?
हिंदी स्पीकिंग यूनियन ये सरकार की एक निधि है, इसे पढ़ा स्टेटल, और सरकार इसमें फंड देती है, बजट है इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर की सहायता से कि ये जो हिंदी स्पीकिंग यूनियन का ऑफिस चलता है। हमारा ध्येय, हमारा जो मकसद है, मिशन है इन दिनों, वो है हिंदी को सर्वांगीण रूप से उसका विकास करना।
जी,
हिंदी की मस्ती करने के बाद, हिंदी पुस्तकें कुछ छापने के बाद, हिंदी जो पढ़ाई जहाँ जहाँ होती है, शनिवार के दिन, रविवार के दिन सायंकालिक पाठशालाएं जिसे हिंदी पाठशाला हम बोलते हैं, इनको अम्पावर करने के साथ साथ हम जो जनता की मांग है हम वो करने को सोच रहे हैं। जैसे अभी आने वाले अगस्त के महीने में हम मॉरिशस में एक बहुत बड़ा, शायद पहली बार होगा, हिंदी मेला आयोजन करने जा रहे हैं।
हिंदी मेला क्या होगा?
और वहाँ बेलमार समुद्र तट पर, वो बहुत बड़ा तट है, सीसाइड है, वहाँ पर रंगमंच होंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, सभी लोग गांवों से शहरों से आएंगे और करेंगे क्या वहाँ पर हम, वाह वाह क्या बात है, एक ऐसे शीर्षक को लेकर के हम जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो माँ बाप हैं, हिंदी के प्रेमी हैं, वो आकर कविताएं सुनाएं, गीत सुनाएं, नाटक खेलें, वहाँ पर उपदेश दें, भजन गाएं। हम चाहते हैं कि हिंदी का प्रयोग उनके नस नस में जो है वो भाव प्रयोग करने का, वहाँ आकर व्यक्त करें, वहाँ आकर के मज़े लूटें, वहां आकर के आनंद के साथ अपनी एकता को दर्शाएं,
अपने विचारों को व्यक्त करें।
बिल्कुल।
तो आप युवकों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
मैं युवकों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि बेलमार समुद्र तट में, लाप्लाज में, बेलमा, हम वहाँ हिंदी मेला मनाएंगे 11 जिमास, मतलब रविवार 11 अगस्त को। हमारी मांग है, प्रार्थना है कि सब लोग हिंदी प्रेमी वहाँ पर उस दिन को एक पवित्र और एक बड़ा दिन समझ करके वहाँ पर आएं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, हित मित्रों के साथ, और विदेश से अगर कुछ परिवार आए हैं उनको लेकर आएं। आइए एक दिन हम बेलमार में हिंदी के नाम से अपने जीवन को जीते हैं।
तो इस तरह से जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो छात्र हैं, सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में, MGI में, आप उस समय
स्कूल की छुट्टी है। अच्छा। इसीलिए बच्चों को ध्यान में रख करके हम चाहते हैं कि वहाँ पर बच्चे आएं, और खाना पीना वहाँ पर जो कुछ होगा वो सारी हम सहायता करेंगे। हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से एक स्टॉल रहेगा, फूड स्टॉल, जो पूरा दिन फूड देगा, खाना जो कुछ है आप खाइए हिंदी परंपरा के अनुसार। और वहाँ पर हम यही चाहेंगे कि लोग डिसिप्लिन के साथ, पवित्रता के साथ, पारिवारिक दृष्टि से वहाँ हिंदी के मेले में भाग लें,
और सारा कुछ मुफ्त रहेगा।
मुफ्त ही रहेगा हिंदी है तो हिंदी के लिए हमें समाज को गठित करने के लिए हम हिंदी मोबिलाइजेशन का सपना देख रहे हैं। आप सभी लोग सहायता करें। देवबरत जी,
श्री सुरेश अम्बन जी, आप जिस जोश से बता रहे हैं, मैं यही आशा करता हूँ कि उसी जोश से हमारे जो युवक है, जो सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो आए और इसमें भाग लें।
हाँ, तो ये जोश तो होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा दुनिया में।
और युवकों में तो जोश है
जोश है उन्हीं में तो जोश होता है।
तो श्री सुरेश अम्बन जी, आपने आकर हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके अपना अपना समय यहाँ पर बिताया। हाँ। आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, फिर भी आप हमारे लिए यहाँ पर आए, इसके लिए हम आपको,
ये हमारा कर्तव्य है, और बहुत खुशी के साथ हम ये हिंदी का कार्य कर रहे हैं।
मैं यही आशा करता हूँ कि हमारे जो युवक हैं वो आपकी मांग को सुने, आपके आमंत्रण को सुने, और वहाँ पर आकर अपना कार्यक्रम समझ कर उसमें भाग लें।
बिल्कुल, धन्यवाद।
तो इसके साथ आज का हमारा जो क्षितिज कार्यक्रम है समाप्त होने जा रहा है। मैं औपचारिक रूप से श्री सुरेश अम्बन जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं सुनील लक्ष्मण को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
क्षितिज, क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।